सत्संग जी, प्यार से कहना धन्यंगा जी, प्रेमा ने बोला धन्यंगा जी। औरंगाबाद में आज सभी उपस्थित समागम के पहले दिन, चाहे एक वो महाराष्ट्र में हर साल कहीं ना कहीं ये इस रूप में समागम होना, और इस बार 56th समागम इस शहर में, ये जो एक ध्यान था कि जब नासिक में हुआ उसके बाद इधर ही हो, पर वो कोरोना काल के दो साल पर किस तरह एक वो भाव कि हर समय चाहे दातार ने स्थिति कुछ रखी, भक्तों ने उसमें भी शुक्र ही मनाया, जहां दुनिया में हर कोई कोरोना की वजह से कुछ ना कुछ मन में एक ऐसे ख्याल ला रहे थे कि एक खुशी नहीं मिल रही, हर तरफ पीड़ा दिख रही है, तो भक्तों ने उस समय में भी देखा कि ये भी इस दातार की ही एक इच्छा के अनुसार है, तो इसमें भी जो अच्छाई है उसको देखें। और कैसे सबने वो जो सिल्वर लाइनिंग की बात होती है, एक हर बादल के पीछे एक वो रोशनी के आकार, तो कैसे हर किसी ने ये देखा कि जो घर परिवार से नहीं इतने समय से मेलजोल हो रहा था, एक भाव मन का कि एक बिजी लाइफ चल रही है, आपस में समय बिताना इतना संभव नहीं, कैसे उस समय जिन परिवारों ने आपसी प्यार करके एक दूसरे के साथ एक अच्छी तरह टाइम, क्वालिटी टाइम बताया, वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से और ज़्यादा क्लोज हो गए, ये प्यार और बढ़ गया। और जिन घरों में प्यार ही नहीं था, उनको एक साथ इस समय मिलने के बावजूद भी वो एक अच्छा समय उनके लिए नहीं महसूसियत का, कि हर कोई बस घर के चंद लोग भी कैसे एक पीड़ा में हो के या ना हो के भी एक दूसरे से कठोर वचन नहीं बोल रहे हैं, तो कैसे जीवन में एक वो भाव आना कि अपनी परिस्थिति को कोसने की ये जो इंसान की फितरत है, या अक्सर कुछ अपने हिसाब से नहीं तो इस परमात्मा को भी कोसा जाता है कि एक हमारे ही हिसाब से जीवन चलता रहे। और वहीं संत जन होते हैं जो हर हाल में इस परमात्मा का शुक्र करते हैं। जो परसों जब दासी ग्राउंड में भी आई तो ये एक बात महसूस करी, चाहे हर दिन रात में वर्षा शुरू हो जा रही थी और एक दिन पहले वो तूफान इधर ग्राउंड में बारिश के साथ आकर वो टेंट्स भी गिर गए, महापुरुष अब गीली ज़मीन भी है, रात को सोना भी है, पूरा दिन एक वो वर्षा के वजह से एक कंफर्ट चाहे नहीं मिल पा रहा, उसमें भी जब संतों से बोला कि ये कठिनाई आ रही होगी, प्रॉब्लम फील हो रही होगी कि एक आराम नहीं मिल पा रहा, ग्राउंड में सुविधाएं नहीं मिल रही, तो संतों ने जो आगे से बात रखी कि इस निराकार ने हमारे शरीर से और सेवा लेनी थी, तभी एक बार अरेंजमेंट्स हो भी गए, और फिर से वो बारिश के कारण चाहे वो टेंट भी बिखर गए, फट गए, और फिर से एक समय और मिला कि रूप फिर से निखारा जाए इस ग्राउंड का। तो संतों ने तो कभी भी अपनी परिस्थिति को नहीं कोसा, इस तरह भी एक सड़क पे भी रात को सो गए कि ज़मीन गीली है तो क्या हुआ, बाहर कंक्रीट की रोड उस पे ही आराम कर लिया, फुटपाथ पे ही लेट गए। तो बात वही कि हर समय भक्तों को एक वो भाव कभी भी इस परमपिता परमात्मा अल्लाह गॉड जिस नाम से भी जानना चाहें, उसके प्रति सिर्फ और सिर्फ एक सत्कार का ही भाव रहता है, ये जानते हुए कि ये कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। एक हमारी ही सोच है जो कभी एक जीवन में कोई चीज़ मिलने के लिए अगर लग रहा है कि स्ट्रगल है और मन में इच्छा है, तो वो एक अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ये व्यक्ति मिल जाए तो जीवन खुशहाल हो जाएगा, ये वस्तु मिल जाए तो जीवन अच्छी हो जाएगा, और कोई सामान, कोई घर, किसी तरह से भी एक दिमाग में बना लेते हैं कि अभी हमारा जीवन अच्छा नहीं है, खुशी नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ मिसिंग है। और फिर वो वस्तु, वो इंसान, वो चीज़, वो सामान मिल भी जाए तो कुछ समय बाद फिर वही बात कि अब उस इंसान का तो जीवन में आना हो गया पर अब भी खुशी नहीं है, वो सामान जो चाहिए था वो भी मिल गया फिर भी खुशी नहीं है। तो बात वही कि कोई चीज़ एक कुछ पल के लिए अच्छा महसूस करा देती है, पर कैसे हर समय के लिए एक रस रहने वाला, एक खुशी जो कुछ हो ना हो उससे ऊपर की अवस्था, ये आनंद की अवस्था है कि जो चीज़ हम अगर आधार ही बना लेंगे संसार में कि खुशी इस चीज़ से मिलनी है, तो संसार की हर चीज़ की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो सामान हो। आज वो चीज़ है कल नहीं, अभी शाम है कुछ देर में रात, सुबह, सब बदलता रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या वो एक चीज़ है जो हर समय के लिए सच है, वो ट्रूथ की बात कि कभी वो झुटलाई नहीं जा सकती, वो सच्चाई ये परमात्मा है कि एक जीवन में हर समय ये उतना ही है, ना ये घटता है ना ये बढ़ता है, ना ये एक कोई अपना आकार लेकर एक उस तरह से शेप साइज में बंधा नहीं, ना ये जलता है ना ये कटता है। तो ये जो एग्जिस्टेंस है, ये ट्रूथ, तो कैसे हर समय जब इसके ऊपर ही अपने आप को जीवन में आधारित कर देंगे तो मन में कोई अवस्था दुख नहीं दे सकती, कोई अच्छी बात इतनी खुशी भी नहीं देगी कि एक अपनी सुध बुध खो के उसमें इतने खुश हो जाएं कि फिर वो सामान, वो चीज़, वो इंसान जीवन में नहीं हो तो मन उदास हो जाएगा। क्योंकि भक्त जानते हैं जो हर चीज़ देता है ये परमात्मा, जिसने चाहे हमें हमारा शरीर दिया, चाहे वस्तुएं दी, फिर भी एक वो बात की संसार में आए एक चीज़ जो परमात्मा ने दी वो उसी की चीज़ है, वो जब चाहे ले। एक बात वो नहीं कि ये शरीर हमारा है, नहीं, अगर सचमुच ये शरीर हमारा है तो थोड़ी सी दिक्कत आने पे हम डॉक्टर पे क्यों जाते हैं, हम खुद ही क्यों अपना कुछ डायग्नोस नहीं कर सकते। थोड़ी सी भी चीज़ होती है तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि पता लगे दिक्कत क्या है, कोई स्कैन्स कराते हैं। अगर वाकई ही ये हमारा शरीर होता तो पूरा इस शरीर पे कंट्रोल हमारा होता, पर ऐसा नहीं है। एक शक्ल पे झुर्रियाँ आना, बालों का सफ़ेद होना, ऐसा कोई भी चीज़ शरीर से जुड़ी हुई हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बात वही कि ये शरीर इस परमात्मा ने दिया, सारी वस्तुएं इस परमात्मा ने दी, और जब संसार में आए हैं तो जाएंगे भी। इसने जो दिया, जितने समय के लिए दिया, वो सदुपयोग जब तक उस वस्तु का, उस इंसान का एक सीखने के रूप में उससे कुछ मिला तब तक ही मुबारक है, वरना तो एक चीज़ हो ना हो तो इंसान फिर, जैसे दासी थोड़ी देर पहले बात कह रही थी कि एक अक्सर ऐसे भी ख्याल आ जाते हैं कि हमने तो किसी के लिए कभी कुछ बुरा नहीं किया तो परमात्मा हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों कर रहा है। तो बात वही कि परमात्मा तो बुरा कर ही नहीं रहा, ये हमारा नज़रिया है कि हम हमारे अनुसार नहीं है तो उसको बुरा डिक्लेयर कर दिया है। तो कैसे एक भाव मन के एक किस तरह से हर समय अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, ये सोच हमेशा दुनिया में विचरते हैं, तो माया रूप में कहीं ना कहीं ये टिकाने के बजाय वो ख्याल इधर उधर जाते हैं। तो कैसे एक संसार में हर तरह की सोचे दिमाग सोचेगा, मन हर समय अलग रंग अपना ही एक महसूस करेगा, तो ये एक रंग में ना बह जाए कि ये रंग अच्छा है ये हर समय ही रहे, नहीं, इस परमात्मा के बिना कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी समय हर समय के लिए नहीं रह सकता। तो कैसे ये बात कि अब ये परमात्मा ने जन्म दिया है, तो एक ये जिज्ञासा आनी इस जीवन में बहुत ही ज़रूरी है कि ये सब हो रहा है तो ये क्यों रहा है, ये मानव शरीर में आए हैं तो क्यों आए हैं। वरना तो हमें जो कहा जाता है कि इंसान हर योनि से श्रेष्ठ है, वो क्या है बात जो बाकियों से अलग करता है। वरना तो एक खाना घर किसी ना किसी फॉर्म में वो पक्षी भी नेस्ट बना लेते हैं जिसको इंसान घर आशियाना कर लेता है। भोजन हर किसी ने अपने तरह का एक किसी भी योनि में खा लेना है, तो ऐसा अलग क्या है कि ये डर भी हर एक को किसी भी योनि में हो, नींद भी आराम भी। तो जो अलग बात है वो यही करती है इंसान को बाकी योनियों से कि ये मनुष्य योनि में आकर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को, इस परमात्मा को समझ लें, देख लें। और जब ये एक बार देख लेते हैं वो हर समय के लिए फिर हर नज़र ही आता है, हर तरफ नज़र आता है। कैसे फिर मन में जितना ज़्यादा ये ठहराव बनता है इस परमात्मा का, मन उतना ही एक विशाल हो जाता है। जिस तरह ये निराकार की कोई सीमा नहीं है, मन भी फिर उसी तरह विशाल हो के एक चीज़ों को माइक्रोस्कोपिकली नहीं, एक पारदर्शी हो के देखता है कि कैसे हर चीज़ एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह नहीं, एक टोटैलिटी में, एक ब्रॉडर विजन से देखा जाए। तो मन फिर हर एक को एक्सेप्ट करता है, छोटी छोटी चीज़ें किसी की तंग नहीं करती, एक किसी का चाहे वो स्वभाव हो, एक किसी का फिर कोई वो और अन्य चीज़, मन हर एक को उसी दृष्टि से देखता है कि ये भी परमात्मा की रचना है जिस तरह मैं हूँ, तो किस बात का एक दूसरे से नफ़रत, गिला और मन में एक ऐसे भाव आने। हर किसी में जिस तरह हमारे अंदर ये परमात्मा है, हर एक में है ये आत्मा, इसी परमात्मा का अंश सभी में है। तो बात यही कि ये जीवन में आ गए हैं तो अब ये जिज्ञासा कैसे लानी, क्योंकि एक पहले की बात अगर करें तो एक डिस्ट्रैक्शन रूप इतना ज़्यादा नहीं, हर किसी को कहीं ना कहीं हर समय वो खुद ब खुद जिज्ञासा आ जाती थी कि किस तरह इस परमात्मा को प्राप्त करें। और अब इतनी डिस्ट्रैक्शंस, ये माया रूप संसार का इतना हावी, तो अक्सर इस शरीर में आके ये आत्मा भी कंफ्यूज्ड कि शायद काम ही ये है कि छोटी उम्र में खेलना, कूदना, पढ़ना, फिर घर बार चलाना, काम करना, और फिर वृद्ध अवस्था में एक शरीर जिस तरह भी हो ना हो, कैसे एक जीवन की बस यात्रा, यही काम कि बस यही करने आए हैं। पर वो आत्मा की भूख, एक भटकन जो होती है, वो इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही, एक जो अक्सर कोई भी हम धार्मिक ग्रंथ खोल लें उसमें मोक्ष और मुक्ति की बात है कि जो जीते जी इस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, इसको देख लेता है, इसको दिल में बसा लेता है, वो जीते जी ही मुक्त है। फिर उसको वो इंतज़ार नहीं करना कि कब सांसें बंद होंगी, ये शरीर काम करना बंद कर देगा और तब ही मुक्ति होगी। जिसने जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसने फिर निसंदेह एक आंखें बंद होने के बाद भी, मौत आने पर भी एक मोक्ष अपनी झोली में डाल लिया। क्योंकि ये बात वो नहीं कि शरीर का खेल है, ये तो आत्मा ने एक टेम्प्ररी घर, जब तक साल जितने जीवन के तो ये शरीर को बना लिया है, पर इस आत्मा की एग्जिस्टेंस तो ये शरीर से ऊपर है। तो कैसे जीते जी भी इस तरह ही एक जिज्ञासा इस परमात्मा को प्राप्त करने की, जैसे ये कहानी दासी अक्सर सुनाती है कि एक कोई व्यक्ति अपने गुरु से ये बात रखकर कि मुझे बहुत जिज्ञासा है परमात्मा की प्राप्ति करके अपना जीवन जीते जी मुक्त कर लूं, और वहीं वो गुरु पानी के अंदर उसका मुंह डाल के रख दे काफ़ी देर, और थोड़ी देर बाद जब निकाला तो वो खांसियाँ ठसके और सांस को अपनी उखड़ी उखड़ी को वापस नॉर्मलाइज करने की कोशिश। और फिर वो गुरु सवाल करते हैं कि जब पानी में सांस नहीं आ रही थी तो सबसे ज़्यादा इच्छा किस चीज़ की थी? और वो इंसान बोलता कि तब बस यही कि किसी तरह सांस आए, ये बेचैनी रुक जाए। और वहीं वो गुरु समझाते हैं कि इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति उस तरह होनी चाहिए जैसे आपकी इच्छा थी उस समय की, और कुछ ना मिले तो भी चलेगा, बस सांस मिल जाए। तो जब वैसी इच्छा इस परमात्मा की प्राप्त करने की हो, वो ही असली क्यूरियोसिटी है, वही जिज्ञासा है जो हर एक में होनी चाहिए कि जीवन में कुछ हो ना हो, बस ये परमात्मा हो। वो बात की जब इच्छा होती है तो फिर इस निराकार ने वो साधन भी बख्शे हैं कि ये प्राप्ति पूर्ण हो जाए। इसीलिए आज बार बार अनाउंसमेंट्स भी हो रही थी कि ब्रह्म ज्ञान कक्ष में जाके जो भी रूहें उस तरह से अपने जीवन की भटकन को दूर करना चाहते हैं, वो इस परमात्मा के दर्शन करके जीते जी भी अपनी खुशहाली कर लें और फिर जीवन ख़त्म होने पे भी एक खुशहाल ही रहें। और फिर बात वही कि बात जीते जी हमें और भी अपने जो काम करने होते हैं, चाहे वो घर परिवार का देखभाल है, चाहे अपने दफ्तर स्कूल इत्यादि में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी हैं, तो फिर जीते जी क्या हम सिर्फ भक्ति करें और ऐसा काम त्याग दें? नहीं, एक भक्ति गृहस्थ में समाज में रहकर ही करी जाती है। अपने घर में जिस तरह हम हर समय कुछ ना कुछ अगर कर भी रहे हैं तो साथ ही ये भक्ति अपने आप ही हो रही है। जिस तरह ये दिल की धड़कनें, ये सांसें, ये पलक झपकना, कोई अलग समय नहीं निर्धारित करना पड़ रहा कि हम एक घंटा पलक झपका लेंगे, हम एक घंटा अपने दिल को धड़का लेंगे। नहीं, ये तो हम चाहे कोई कार्य कर रहे हैं, हम ये दिल भी उसी तरह धड़क रहा है, ये पलक भी उस तरह झपक रहे हैं हम। तो उसी तरह ये दातार से प्यार, ये भक्ति एक कोई भी कार्य करते हुए साथ ही की जा सकती है, और वही असली प्रेमा भक्ति बन जाती है जब हर कार्य से फिर प्यार हो जाए, हर इंसान से प्यार हो जाए, और उसका बेस ही ये हो कि ये निराकार के एहसास में किया गया काम था तो अब ये काम नहीं रहा, ये सेवा बन गई, ये दिल में किसी के लिए एक अरदास रूप का आना, एक दिल से परोपकार पूरे संसार के लिए आना। तो बात वही जैसे हम अक्सर सुनते हैं, ऐ मेरे मन सुमिरन कर ले, तो वो बात ये नहीं कही गई कि ऐ जीभ सिमरन कर ले, ऐ शब्दों द्वारा सिमरन कर लो। नहीं, मन को कहा जा रहा है कि मन में इस दातार का एहसास करके सिमरन करो, वरना तो वो शब्द शब्द ही रह जाएंगे। जब इस एहसास के द्वारा किया जाएगा वो महसूसियत, तो वो एक सिर्फ अपने तक ही नहीं, वो भाव फिर पूरे संसार के कल्याण के बन जाते हैं जब मन में ये दातार हो और सुमिरन करके, सेवा करके, सत्संग करके, फिर वो चाहे हम जीते जी भी ये भक्ति हर समय कर सकते हैं। फिर जो आज बार बार सुन रहे हैं हम रूहानियत और इंसानियत संग संग, तो वो बात भी कि एक जीवन में सिर्फ इंसानियत, ये ह्यूमन वैल्यूज़, एक ये अच्छा इंसान बनना ही, फिर ये क्या है कि क्या हम अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे इंसान बन गए हैं, तो क्या एक जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया? वो इंसानियत के गुण पूरी तरह भी मन में तभी बस पाते हैं जब इस रूहान, इस परमात्मा का जो वास है हमारे अंदर हो जाता है। वरना तो वही, जैसे कहा गया है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि कैसे एक दैवी होना हर एक में संभव है, बस इस देव के साथ जुड़ना है, इस परमात्मा के साथ जुड़ना है, इसको पहचान कर इसमें एकमिक होना है। जब ऐसा हो जाता है फिर इंसानियत सीखने की बात नहीं रह जाती, फिर मन में खुद ब खुद वो करुणा, दयालुता, एक प्यार, स्नेह, एक दूसरे से एक किस तरह रवैया रखना है, वो बिहेवियर, वो कुछ समय का नहीं, हर समय एक अच्छाई हमारे अंदर एक बाय प्रोडक्ट की तरह ही आ जाती है कि इस परमात्मा से प्यार हो गया, इसको देख लिया, मन में बसा लिया, तो अब जीवन में ह्यूमन वैल्यूज़ खुद ब खुद आ गई। वो फिर ज़बरदस्ती की सिखाई भी ऊपरी बिहेवियर नहीं है, अंदर से ही वो बात कि जिस तरह एक शरीर में अगर हम कहीं पे भी एक स्क्रैच लगता है तो ब्लड ही बाहर आता है क्योंकि शरीर के कोने कोने में वो खून ही बसा है, तो कैसे कहीं से भी स्क्रैच करेंगे खून नहीं आना है। वहीं उसी तरह एक अगर इंसानियत अंदर भर गई क्योंकि ये रूहान अंदर बसा है, ये परमात्मा बसा है, तो अंदर से हर समय ही चाहे कोई स्थिति हो, कुछ भी हो, अंदर जो है वही बाहर आना है। तो ऐसी अच्छाई, हर समय की अच्छाई हर किसी के हिस्से में रहे, हर कोई अपने जीवन में सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए, और वो भी किस तरह एक सही रीज़न से, एक सही नियत से। वरना सत्संग आके अगर जो शब्द बोले गए संतों ने उसको अनसुना कर दिया, ध्यान कहीं और रखा, कोई सिर्फ अगर गीत भजन चल रहे हैं तो उसमें उनके बोलों को मन में नहीं बसाया, सिर्फ एक धुन को, म्यूज़िक को ही इंजॉय करके कान रस तक एक उस समय का टेम्प्ररी एक झूम लिया, पर ये सही वजह नहीं है कि सत्संग सिर्फ अपने आप को दुनिया की चीज़ों से काटने के लिए आओ। नहीं, सत्संग तो इसलिए है कि सत्संग में संत हैं, संतों का संग करने से जीवन में असली परिवर्तन आता है, उनके बोलों को एक सिर्फ ऊपरी ऊपरी ना सुन के जी कर जीवन बदला जा सकता है। और जो अपने जीवन को इस तरह बदल लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि एक सिर्फ प्रथा की तरह नहीं सेवा, सुमिरन, सत्संग कर रहे, वो वाकई ही इस परमात्मा को अंग संग देख रहे हैं, मन में बसा के हर किसी में, पूरी सृष्टि में इस परमात्मा को देख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में देख रहे हैं, और फिर हर कार्य को सही उद्देश्य से कर रहे हैं। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी, बाकी अपने मन के भाव आने वाले दिनों में आपके चरणों में रख देगी। सत संगत जी, धन अंकार जी।